उसके ऊपर चलते हैं सेकंड लेवल पे। उसके बाद मुआशरे का वो हिस्सा है जिनको हम अपनी इस्तलाह में शुरफा कहते हैं, शरीफ लोग। वो कौन है? जिनकी मुआशरे में इज्जत होती है, कारोबार भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, औरतें हैं तो घर की औरतें हैं। अब ये वो ग्रोह है जो आपको कसरत से मिलेगा, क्योंकि किसी सोसाइटी में बहुत थोड़े लोग क्रिमिनल होते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने सबका सुकून गारत किया होता है। लेकिन मेजॉरिटी के कॉमन पीपल, जैसे मैं और आप अमूमन अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, नमाज का वक्त आता है जाके नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कुछ और दिल चाहे तो वो भी करते हैं। वही बात है कि खलत अमलन सालिखन व आखिरा सही हो, सूरह तौबा में आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छे अमल मिलाए हुए अपनी ज़िंदगी में और कुछ बुरे। ये मस्जिदों में भी पाए जाते हैं, ये आपको हो सकता है बाद दफ़ा नाइट क्लब में भी मिल जाए, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में गाने भी हैं और कुरान भी है, यानी इनका एक मामला बिगड़ा मिक्स है। नमाजें भी पांच पढ़ते हैं लेकिन फिल्म भी कोई नहीं छोड़ते। अपने मामलात में कुछ मामलात में बहुत क्रिटिक हैं और कुछ में बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। ये बीच बीच के लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चाहे सूद की कमाई से कमाएं लेकिन रमज़ान में उमरा कराते हैं, ये चाहे शराब बेचें लेकिन उसमें से कुछ मस्जिद को चंदा भी दे देते हैं। इन्होंने एक क्या सोचा हुआ, नहीं दीन भी रखो दुनिया भी रखो। अब ये वो लोग हैं कि जो अपने आप को हर जगह खुश रखना चाहते हैं, कहते किसी को नाराज़ ना करो। ये उलमा की भी बड़ी इज्जत करते हैं, उनको देखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको गाड़ियों में बिठाते हैं और उनको बहुत मुश्किल हो उनसे मशवरे भी करते हैं, उनसे उनके रबते भी होते हैं, लेकिन साथ इनकी शहर के ज़रा बिगड़े हुए लोगों से भी सलाम दुआ आती है ताकि किसी मुश्किल में आए तो इन्होंने तो हमारी जाके सिफारिश करनी है। किस्सा मुख्तसर, ये दूसरा गिरोह है। इसके ऊपर चलते हैं थर्ड गिरोह। तीसरा गिरोह नेकियों के एतबार से कौन सा होता है? जिनको आप किसी सोसाइटी की का रिलीजस तबका कहते हैं। मिसाल है उलमाए कराम, आइमाए कराम, मस्जिदों के इमाम, दरसो तदरीस वाले लोग, उस्ताद, यानी जो लोग मोस्टली किसी सोसाइटी में, आपके भी शहर में होंगे, मैं नहीं जानती, आपके बहुत से होंगे जी, ये फलां मस्जिद के इमाम है, ये फलां जगह पढ़ाते हैं, ये हैं, जिनकी शोहरत ही दीन होती है। अच्छा, ये वो लोग हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल तक पहले पढ़ा भी होता है, हाफिज़ भी होते हैं बस लोग, बस कई कई साल के कुरान के कोर्स भी कर चुके होते हैं, तर्जमा भी जानते हैं, हदीस है। इन लोगों में जो अमूमन देखा गया, सब नहीं क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन एक जनरल जिसको ऑब्जर्वेशन कहें वो क्या होता है कि जो लोग रिलीजियसली आगे जाते हैं ना, वो रिचुअल्स में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मसलन दाढ़ी की लंबाई कितनी हो, मुट्ठी भर के उससे कम काट सकते हैं कि नहीं, शलवार टखनों से ऊपर हो के ना हो, पैंट कोट पहन सकते हैं कि नहीं, टाई लगा सकते हैं कि नहीं, यानी ये रिचुअल्स में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाथ कहाँ बांधो नमाज में, और फिकी बातों में जिसको आप कह सकते हैं, इनका सारे दलाइल हो, चाहे ये कुरान सुन्नत से भी जुड़े, लेकिन ये पूरे इल्मी दलाइल बहुत देते हैं। लेकिन देखा गया कि ये लोग चूँकि इतना ज़्यादा इल्मी बहसों में पढ़ते हैं तो इनका मामलात वाला जो पहलू है ना, वो कमज़ोर रहता है। हो सकते हैं बद अखलाकों गीबत करें, एक आलिम दूसरे आलिम से हसद करे, एक दूसरे की लेग पुलिंग करे, उसको उसके ख़िलाफ़ कर दे, और दीन का हसद सबसे बुरा हसद है, यानी अखलाकी तौर पे हो सकता है घर आएँ तो घर वालों को सांप सूंघ जाए, बीवी के साथ सख्ती की बात करें, रिश्तेदारों की बेइज्जती कर दें, किसी को देखा कि कोई नंगे सार है सारे उम्र बीच गए क्या, लड़के दुपट्टे लो सर पर, तुम ऐसी हो वो आग में जाओगी, पकड़ा सबको, यानी बास दफ़ा कुछ केसेस में ऐसे लोग इंसानी जज्बात का ख्याल नहीं रखते। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ, अगर कोई ऐसा है, हर इल्म वाला ऐसा नहीं होता, याद रखिए, जितना इल्म थोड़ा होता है ना सख्ती आती है, इल्म ज़्यादा आएगा तो आप में हमेशा नरमी आएगी। मैं इसकी छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कपड़े से। नया कपड़ा सख्त होता है, कड़कता हुआ, बहुत चमकता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पहनने धोएं इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि वो कितना सॉफ्ट होता जाता है। इसी तरह शुरू के इल्म में अकड़ बड़ी होती है, हम इतने नेक तुम इतने ख़राब, तुम तो बोर, तुम मुनाफिक और तुम काफिर, ऐसे फतवे भी बहुत निकलते हैं इस गिरोह से बाज़ुबा। लेकिन आप और इल्म हासिल करें ना तो आप देखेंगे कि उसके साथ चीज़ें होते, कई खानों में आप ये मिसाल कोट कर सकते हैं कि शुरू में चीज़ एकदम अकड़ के सख्त होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम होकर गलती है। इल्म आधा होता है तो बहुत सख्त कर देता है बंदे को। अच्छा, अब क्या हुआ, ये गिरोह ऐसा है कि जिनके अंदर इबादत तो है, रिचुअल्स तो है, नमाज वो कभी नहीं छोड़ते अल्हम्दुलिल्लाह, जमात से भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि नमाज जो सिखाती है वो कम है, रूह नहीं है। जैसे मेरे सामने ये माइक रखे हुए, अब ये माइक तो मौजूद है, पीछे से आप बिजली बंद कर दें तो ये काम करेगा? मेरी आवाज़ अब तक नहीं जाएगी ना। बस ये ऐसी है कि जैसे दीन का एक ढांचा तो बन गया, लेकिन वो नमाज का इखलाक, वो रोज़े की का सब्र, और वो हज की यूनिटी, और वो अल्लाह से ताल्लुक़, दुनिया से बेनियाज करना, ये चीज़ें नहीं रही। बहरहाल, इससे आगे चलते हैं जो आखिरी गिरोह है, चौथा गिरोह, जिनको आप किसी सोसाइटी के इन लीड्स कहेंगे, क्रीम उस सोसाइटी की, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दुनियावी तौर पे इंतहाई जिस एजुकेटेड पीपल, बाहर की यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हुए, जिनकी ज़िंदगी में इस किस्म के बहुत सारे मरहले होते हैं कि वो माशरे में दुनियावी लेवल पे बहुत ऊपर होते हैं, ऐसे लोग जो हैं, अब इनको भी थोड़ा सा देखते हैं, इनमें क्या खूबी, इनकी नेकी क्या है? ये कहते हैं वक्त पे आओ, जो वक्त दिया उस पे पहुंचो। इनको बहुत बुरा लगेगा अगर ये किसी को वक्त दें और ना जा सकें, या कोई इनको वक्त देते ना है। फिर दूसरी चीज़ इनमें देखिएगा कि मोस्टली ये लोग बहुत पोलाइट होते हैं, इतने बाखलाक बाज दफ़ा होते हैं कि अपने ड्राइवर को भी सलाम करेंगे, क्या हाल है, खान सामा को भी प्यार से बात करेंगे, और ये लव 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 की बातें बहुत करते हैं। फिर एक और चीज़ इस गिरोह में क्या होगी कि ये सोशल वर्क बहुत करेंगे, कहीं जलजला आएगा तो जाके ये वहाँ फंड रेजिंग करेंगे, चाहे नाच गाने का प्रोग्राम ही करके फंड रेजिंग करनी पड़े, और ये सड़कें बनाने की बातें करेंगे, ये हॉस्पिटल्स की बातें करेंगे, ये कहेंगे ये कुर्बानी क्या, अब छोड़ो खाम खा, इतना गोश्त खाता कोई नहीं, इसकी सड़कें बनाओ। इस तबके का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये वैसे मैनर्स और एटिकेट्स वाइज बहुत आगे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये रिचुअल्स की परवाह नहीं करते, कहते जी नमाज नमाज से क्या होता है, वो तो दिल की, और हज क्या, वो तो उस दौर की बात है, अब आजकल हज कौन करे। यानी ये रिचुअल्स में बहुत केयरलेस होते हैं, इवन 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते और सारा दिन लोगों की खिदमत के नाम पे गाड़ियां दौड़ाते रहते हैं। अब यहाँ भी तसव्वुर अधूरा है, यहाँ के ये माइक गायब कर दें, सिर्फ बिजली का एक तार करंट वाला छोड़ दें, कितना ख़तरनाक है। इनमें रूह है, नमाज नहीं है, उसकी इबादत नहीं है। ये चारों गिरोह जो मैंने आपके सामने रखे ना, ये सिंबल करते हैं कि अभी पूरे दीन का खूबसूरत नक्शा नहीं आया। अगर हम इन चारों में से फिर पूछें फिर असल नेक कौन है, तो आइए अल्लाह के कलाम से पूछें, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्ला वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबी वन नबीयीन। यहाँ तक तो बात हो गई रिचुअल्स की कि उसको अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, और कौन से अल्लाह पे, जीसस गॉड पे, किसी बुत को खुदा कहकर, या उस अल्लाह पे जो नबियों ने बताया, वो ज़ात के जो खुद हमें बताती है कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह को मानना, और ये है वो चीज़ जो आपके लिए बाकी सारे कामों को आसान करेगी। बस दफ़ा हम लोग गुड डीड्स और राइटियस डीड्स में फ़र्क नहीं कर पाते, कहते फुलां भी देखो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लिख लें ये जुमला, हर अच्छा काम गुड डीड नहीं है। अच्छे काम को गुड डीड बनाने वाली चीज क्या है? नबी का तरीका, सुन्नत। आज इतना हमारे माशरों में कन्फ्यूजन है, क्या कौन नेक है कौन नेक नहीं, कौन ठीक है कौन गलत है, क्या वजह है? देखो फलां वो क्रिश्चियंस, वो इतना सोशल वर्क नहीं करते, और वो देखो उन्होंने इतने लोगों के हॉस्पिटल्स फ्री बनाए हुए हैं, और देखो यहाँ हम रहते हैं हमें कितना सुकून है, कितना सोशल इनकी हेल्प है, और इन द डिग्निटी ऑफ लेबर है दिस एंड दैट। ये है इनके, क्या है ये गुड डीड्स हैं कि राइटियस डीड्स हैं? ये गुड डीड्स हैं, लिख लें, गुड डीड कोई भी कर सकता है, अल्लाह के यहाँ जो मतलूब है ना वो राइटियस डीड्स हैं। राइटियस डीड्स क्या है? जो नबियों के तरीके के अंदर रहे। मिसाल देती हूँ, नबी का तरीका यह है कि आप सारा दिन लोगों की मदद करते थे, गरीबों का बोझ भी उठाते थे, उतने में अजान आ जाती थी हई आलस सलाह हई आलल फला, तो उस वक्त पता चल गया कि अब मुझे मेरे रब ने पुकारा है। नमाज छोड़ के अगर मैंने किसी बेवा की मदद की, यतीम की मदद की, तो ये मेरा गुड डीड तो है लेकिन राइटियस नहीं रहा। बात वाजे, राइटियस करने के लिए ज़रूर वन नबी जीन की साथ बात लगेगी। ये मुगालता है आज हमारे यहाँ, और इस वजह से हम कभी कह देते हैं लोग हम मुसलमानों से तो फलां काफिर अच्छा, मुसलमान से काफिर कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर गुड डीड तो कर रहा है, राइटियस डीड्स नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसके लिए सुन्नत जो है ना, ये हमारे ऊपर एक होल्ड लगाती है, क्या करना है और क्या नहीं करना। नबियों ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये करो, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कितना करो, कब करो। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद ख़वातीन है तो फ़ायदा हो। केक तो आप सब बनाते होंगे, नहीं बनाते तो बनता देखते तो होंगे, और ये तो पता है कि केक बनता कैसे है। आपको कोई रेसिपी देता है, पहले इंग्रेडिएंट्स है, फ्लावर इतना, दूध इतना, अंडे इतने, बटर इतना, चीनी इतनी, ये सब कुछ रखा हुआ है, और साथ फिर नीचे होगा इसको घोलें, इसमें पहले ये डालें, वो डालें, इसको रख दें, फिर इसके बाद ओवन खोलें, उसमें ये डाल के इसको इतने पे जला दें। जब पूरे को ए टू जी फॉलो करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि बेस्ट केक होगा, रिजल्ट वही होगा ना जो के होना चाहिए। अब मेरे जैसा अनाड़ी बंदी कह लें, वो कहती लो केक बनाने ना, क्या हरज, जैसे मेरा दिल करे। हाँ, अगर मैं कहूँ कि क्या हरज है, आपने लिखे हुए जी 6 अंडे डालने हैं और 2 कप मैदा डालना है, मैं कहूँगी क्या फ़र्क पड़ता है, 6 की बजाय 16 अंडे डालते हैं और 2 कप तो मैदा बहुत ज़्यादा है, 1 कप बहुत है, और मैं उन 16 अंडों में 1 कप मैदा का घोल घाल के बैठ जाऊँ। फिर मैं कहूँ कि चीनी की क्या ज़रूरत है, अच्छा जी, फिर मैं क्या कहूँ, क्या ख्याल है नमक ना डाल दूँ, आप कहेंगे नहीं कहाँ लिखा है रेसिपी में, तो मैं आगे से कहूँ मना भी तो नहीं किया ना उन्होंने, मैं उसमें गरम मसाला डाल दूँ, आपके ये क्या कर रही हैं कहाँ लिखा है, तो मैं कहूँ कि मना भी तो नहीं किया। आज ये जुमला आप कितना बोलते हैं, सुनते हैं दीन के नाम पे, ये क्यों कर रहे हैं, कहाँ लिखा है, कहते हैं मना भी तो नहीं किया, और साथ ही मैं कहती हूँ क्या हरज है। अब मैं देखिए सारे अंडों को अलग फेंट दूँ और मैं उनको अलग ओवन में रख दूँ और मैदे के कप के अंदर स्टील के डाल के अलग रख दूँ, सारी चीज़ों का अपनी मर्जी से डाल के मिलाऊं नहीं, करूं नहीं और रख दूं, क्या वो केक बनेगा, वो कुछ भी बन जाएगा और वो ऐसी चीज़ बनेगी जो दोबारा नहीं बनेगी कभी। ये होता है जब आप नबियों के तरीकों और कुरान की रहनुमाई के बगैर अपनी मर्जी से नेकी बदी के मेयार सेट करते हैं, वो केक नहीं बनता। केक को यहाँ लीजिए इस्लाम, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा कर दिया और इसका नाम इस्लाम है और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। पूरी रेसिपी बुक देके गए नबी हमें, ए टू जी इस्लाम, जिंदगी कैसे बिताओ, तुम्हारी जिंदगी में कैसा रंग होना चाहिए, क्या करो, कितना करो, कब करो और क्या ना करो, ये एक एक चीज़ का नाम है। लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। मसला क्या है आज के दौर में हम में से अक्सरियत का, कि हम वो रेसिपी बुक नहीं पढ़ना चाहते और हम प्रॉफिट का वो प्रैक्टिकल स्टेप नहीं देखना चाहते जो बाज़ दफ़ा लैब्स में जाके दिखाया जाता है। अगर आप में से किसी ने मेडिकल किया हो तो आप जानते हैं, आप 100 किताबें पढ़ लें, जब तक आप लेबॉरेटरी में बैठकर वो सारे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे जो करने थे, आप एक इंसान का ऑपरेशन तो छोड़ दीजिए, आप उसका कट नहीं लगा सकते, कल मरीज आ जाएगा और आपने कभी प्रैक्टिकली कोई पेशेंट देखा ही ना हो तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। बस यही बात है, हम अपनी जिंदगियों में जिससे जो मर्जी सीखे, बस लोग कहते हैं हम बड़े नेक हैं, फलां बहुत नेक है, क्या नेक है, वो हर साल हज पे जाते हैं, तो फिर नेक हो गए, माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा जी, उनके और वैसे मामलात क्या, नहीं वैसे ज़ुबान के बड़े सख्त, किसी से लगा के नहीं रखते, बच्चों से बड़े सख्त हैं, और शहर में उनकी कई लोगों से झगड़े हैं। भाई हज तो बहुत कुछ सिखाता है, खैर ज़ाद तकवा, हाँ तकवा लेकर आओ, हज से आए हो, उसका असर तुम्हारी ज़िंदगी में दिखे, वो किधर है, वो एक अलग खाना बनाया हुआ है। आज हमने मुख्तलिफ पाउचेस बनाई हैं, पोटलियाँ होती हैं ना, आप देखिए बाज़ ख़वातीन ने पोटलियाँ रखी होती हैं, ये पैसों की है, ये जेवर की है, ये कोई भी है, कहाँ भी देखें, और उस पोटली को जिसका जो दिल चाहता है अपनी पोटली उठा के चल पड़ता है, कहता है बस दैट्स इट फॉर मी। मेरी आपकी पोटली से बात नहीं चलेगी, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के अंदर झांकना पड़ेगा, और जब तक हम ये कुरान नहीं समझेंगे, ये एक पूरी रेसिपी बुक है। आप देखिए बाज़ ख़वातीन अंदाज़ों से खाना पकाती हैं, कभी अच्छा पक जाता कभी ख़राब पकता, क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आपको एक एक चीज़ को फॉलो करना है। कभी आपने देखा होगा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड रखा हो, अगर आज आप वहाँ हलीम खाते हैं ना, तो साल बाद भी खाएंगे तो वही टेस्ट होगा जिस टेस्ट के लिए आप दोबारा गए। اور ہم جیسی خواتین جو گھر میں پکاتی ہوں گی کبھی تو کہتے ہیں آج تو حلیم بڑی مزے کی پکی، تو اگلی دفعہ کہتے ہیں نہیں وہ کچھ گزارا نہیں ہوا، ٹھیک نہیں پکی، بریانی دیکھ لیں، پلاؤ دیکھ لیں، ہر دفعہ نیا پکتا ہے نا، الا یہ کہ ایک ہی فالو کر رہے ہیں اپ سیٹ کو، یا آپ کا ایکسپیرئنس اتنا ہو چکا ہے، فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اندازوں سے کام کرتے ہیں۔ کیا چلیں چھوڑیے پلاؤ بریانی کو تو چھوڑیں، جیسا بھی ہوا کھا لیں گے، کیا دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو میں نے کہہ دیا آپ یہی کر لیں تو بہت ہے، پھر ہماری گروتھ رک جاتی ہے۔ ہم ایک چھوٹے بچے کو بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری گودوں میں ہمارے بچے ہم سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ قد ان کے اتنے لمبے نکل جاتے ہیں، ہم اس کے مختلف مرحلے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح پلتا پلاتا وہ یہ کام کرتا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ہم جب اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب اللہ سے کوئی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ٹھیک کر لوں گی اس بچے کو، میں پال لوں گی اس کو، اس کے مینرز میں ٹھیک کرا لوں گی۔ تو زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ من آمن باللہ کے بعد والکتاب سے ون نبیین تک کے سارے مرحلے طے ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے یوم الآخر مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، جنت اور جہنم کا یقین بھی ہماری رائٹیس ڈیڈز کی دلیل ہے۔ گڈ ڈیڈز اور رائٹیس ڈیڈز میں یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ کافر دنیا میں گڈ ڈیڈ کرے گا لیکن وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں ہی فائدہ چاہیے، اور جس نے جنت مانگی نہیں اس کو اللہ جنت دے کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ جنت میں کیوں کہتے ہیں کہ جی کافر جنت میں نہیں جائیں گے، تو پہلی بات ہے میری مرضی ہے آپ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کے بندے جانے، میں اور آپ کیوں بولیں، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ مدر ٹریسا تو چلی گئی، لیڈی ڈیانا تو چلی گئی، ہم اپنی فکر کریں۔ بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے زبردستی دو چار کافر جو مشہور تھے دنیا میں ان کو تو جنت میں بھیجیں، اور یہ جو ملا مولوی نے ان کو تو اللہ پتہ نہیں کہاں پھینکے گا، اتنا تعصب رکھتے ہیں دین سے اور دینداروں سے۔ بھائی مجھے اور آپ کو کیا لگے، پہلے اپنی فکر تو نبھائیں، ہمیں تو یہ غم ہے کہ میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی، کسی دوسرے کی تو بندہ تب فکر کرے جب اپنے حال سے وہ مطمئن اور مسرور ہو جائے۔ تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا اجر آخرت میں چاہتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج کا یہ درس ہم نے سنا یا ہماری سسٹر نے اپنے گھر میں رکھا، یہ کہتے ہیں نہیں بس میں آج اچھا لگ رہا ہے مجھے اور آپ سب آئیں اور سنیں، لیکن میں اس سوچ سے نہیں کر رہی کہ مجھے اس کا کوئی اجر ملے، تو کیا ان کو ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے اس لیے رکھا جسٹ اے گیٹ ٹوگیدر، اور اٹ از جسٹ لائک اے ہیومن کاز۔ یہ جو لفظ ہے نا آج کے دور میں فار دا سیک آف ہیومینٹی یا فار دا سیک آف ریلیجن، یہ بھی ایک بہت بڑا پاڑ بن گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہیومینٹی کی بات کرو ریلیجن کی بات نہ کرو، اور آپ کو کہتا ہے کہ نبیین پر ایمان گھٹتا ہے نا تو اس کے بعد دین اپنی مرضی کا بن جاتا ہے۔ یہ آج کے دور میں آپ کو مجھے ابھی نہیں پھر فیل ہو رہا، لیکن وہ صاحب شعور لوگ دیکھ کے پہلے ہی زمانے کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ لکھ لیجئے یہ باتیں اپنی کہیں کتابوں میں جن کو آپ کے بچے پڑھ سکے، اور اس زبان میں لکھیے گا خدا کے لیے جو آپ کے بچے جانتے ہیں۔ بچہ تو آج ماں کی زبان نہیں جانتا، اس کی جذبات کہاں جانتا ہوگا، ہمارے بچے اپنی زبان نہیں مادری بول پڑھ سکتے، انہوں نے کل کیا ہماری روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ اور جب بھی مسلمان کٹے تو اس کی بہت بڑی وجہ اپنی زبان اور اپنے کلچر سے کٹنا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ پر تباہی اور زوال کی بہت بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات کہیں بھی لکھ کے رکھ دیجئے کہ آنے والی نسلوں کو جو چیلنج ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، یا یہ نہیں ہے آج کہ بھائی تم حج کرو نہ کرو، آج کا چیلنج کیا ہے کہ کیا اسلام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور تمہیں کیا پتا وہ خدا ہے کہ نہیں، چلو ادھر کوئی بت دکھ تو رہا ہے اس کو تو پوج رہے ہیں، تم کس اندیکھے کو دیکھ رہے ہو؟ یعنی آج جو وحدت ادیان یونی ریلیجن کا نظریہ عام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اپنے تجربات پیش کرتے ہیں۔ ایک سسٹر نے کہا آج کل میرے شوہر ایک جگہ جاتے ہیں اور وہ اپنے دین کو نریکن کارینن کچھ اس طرح کا نام تھا، تو قصہ مختصر یہ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی دھرم کی بات نہ کرو، کسی دین کی بات نہ کرو، تم بھی آ جاؤ، ہندو آ جاؤ، سکھ آ جاؤ، مسلمان ہو آ جاؤ، ہم سارے ایک ہی ہیں اور سب کو ملا کر ایک دین بنا دیتے ہیں۔